समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। खेल जगत के मैदान की भी हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या है जयंती। आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम। और जो सबसे खास बात थी कि भाई आज हम लोग याद कर रहे हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं बापू यानी गांधी जी को। एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली यू हर्ड दैट फेमस सॉन्ग वैष्णव जन, तो एंड वी विल टॉक अबाउट दैट मोर इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। एंड बाकी सब कुछ तो मुकेश बता ही चुके हैं क्या कुछ होगा खास, सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो ऑफकोर्स वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी what interesting stories are pouring in. All of that in the roughly next half an hour. But first, let's start with the headlines.
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना मूलभूत मॉडल तैयार करेगा।
इलेक्शन कमीशन asks अरविंद केजरीवाल टू फाइल स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड रिप्लाई ऑन allegations ऑफ यमुना पॉइजनिंग।
देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी।
ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल सबमिट्स रिपोर्ट टू लोकसभा स्पीकर।
और अमेरिका में वॉशिंगटन के पास एक यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टक्कर से 18 लोगों की मौत।
And now it's time for Dateline India. And as I mentioned that today is 30th January, Martyrs Day. And we all know that Gandhiji left the physical world today. And Gandhiji ke dil ke kareeb bahut sare mauzu the, communal harmony of course being one of them. And uske alawa jitne bhi log jinko samaj hai, keh sakte hain haashiye pe rakh deta hai. People who are marginalized because of some reason or the other, be it for because of their caste, be it because of... some disease, and that one of the disease that used to affect a lot of people then was leprosy. And since most of the lepers were ostracized by the society, they were treated as untouchables. So Gandhiji ne unke bhi liye bahut zyada, you keh sakte hain ki he was, you know, that issue was quite close to his heart. And why we are talking about both of them is because today is World Leprosy Day as well. And the grateful nation is paying homage to Mahatma Gandhi on his 77th death anniversary. And that's why we celebrate Martyrs Day. We observe Martyrs Day rather. And on the occasion, a Sarvdharm Prarthana was organized at Raj Ghat, which is the Samadhi of Bapu in New Delhi this morning. And the President laid a wreath at the Samadhi of Mahatma Gandhi in the National Capital. Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi and Leader of Opposition Rahul Gandhi also paid floral tributes at the memorial of Mahatma Gandhi on the occasion. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal, Chiefs of all three services and Chief of Defence Staff were also present on the occasion, among others. Every year on 30th January, the nation honours the life and legacy of Mahatma Gandhi, who was the guiding light of India's struggle for independence. The day is also observed as Martyrs' Day or Shaheed Diwas, which marks a moment of reflection on the profound sacrifices made in the pursuit of freedom. Marking the death anniversary of Mahatma Gandhi in India, World Leprosy Day is celebrated on 30th January as well. This international day is observed on the last Sunday of January every year, an opportunity to celebrate the people who have experienced leprosy, raise awareness about the disease, and call for an end to leprosy-related stigma and discrimination.
बिल्कुल, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 का विषय एकजुट हों, कार्य करें, मिटाएं हैं। विषय कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने और कुष्ठ रोग समाप्त करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्रवाई का आह्वान है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। ये मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की झिल्लियों और आंखों को प्रभावित करता है। यदि उपचार ना किया जाए तो ये विकृति और विकलांगता का कारण बन जाता है। एक समय विनाशकारी माने जाने वाले इस कुष्ठ रोग का समय पर इलाज से पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद कुष्ठ रोग दुनिया के कई हिस्सों में चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों में जहां स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित है।
And if we talk about some of the symptoms, Manoj, there are several symptoms that we can look out for. There are hyperpigmented skin patches with clear reddish margins that can persist for weeks or even months. The affected area may display no sensation whatsoever in the senses of touch, pain or heat. And nodular skin lesions may develop, usually seen over face, ears and body. There can be disfigurement of face known as a lumpy face. Loss of hair and sweating over the affected area may occur. Numbness or tingling sensations can be felt in the hands, feet or other parts of the body. And on examination, usual finding is enlarged tender peripheral nerves. There's also muscle weakness that is mainly noticeable in the hands and feet, which may lead to foot drop or claw hands.
जी हाँ, कुष्ठ रोग एक उपचार योग्य बीमारी है। इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन से किया जाता है, जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT के रूप में जाना जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर रोगियों को निशुल्क प्रदान किया जाता है। रोग के प्रकार और गंभीरता के आधार पर उपचार लगभग 6 महीने से 12 महीने तक चलता है। तंत्रिका क्षति और विकलांगता जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र निदान और उपचार जरूरी है।
We can also prevent leprosy. There are some, you can say, kuch ehtiyat barat sakte hain, that it can be prevented by reducing prolonged contact with untreated patients. Also, early detection and case management prevents its transmission. Also, in some high-risk situations, family members of patients may be put on preventive antibiotics to decrease the risk of developing leprosy. Good hygiene and avoiding overcrowding minimizes the transmission.
और सायरा, अपने श्रोताओं को बताते हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो वैश्विक प्रयास किए गए हैं और क्या कुछ चुनौतियां उसके सामने आती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कुष्ठ रोग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहा है। अपनी वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति के माध्यम से WHO का लक्ष्य बीमारी के बोझ को कम करना, गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच में सुधार करना और बेहतर नैदानिक उपकरणों और उपचारों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं कलंक और भेदभाव। जी हां, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उपचार और सहायता तक उनकी पहुंच में बाधा आती है। देर से निदान भी इस उसमें चुनौती में आता है। देर से निदान से तंत्रिका क्षति और विकलांगता सहित गंभीर जटिलताएं आ सकती हैं। इसके अलावा कई कम आय वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां कम संसाधनों वाली हैं, जिससे व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करना कठिन हो जाता है।
And if our listeners probably want to contribute in probably raising awareness or in some way, well, here are some points that you can, that you know, how you can help. Well, you can of course raise awareness about leprosy and support organizations that work to combat the disease. These are crucial steps in the fight against leprosy. Educate yourself and others. Learn more about leprosy and share accurate information to dispel myths and reduce stigma. Support charities and NGO. Donate to organizations that provide medical care, advocacy and support for people affected by leprosy, and advocate for policy change. Encourage policymakers to prioritize leprosy control and provide adequate resources for healthcare and support services. And just to conclude this segment, let me just share with our listeners that World Leprosy Day is an opportunity to unite in the fight against leprosy and to show solidarity with those affected by the disease. By raising awareness, challenging stigma and supporting ongoing efforts to provide treatment and care, we can move closer to a world where leprosy is no longer a public health threat.
बिल्कुल, तो आइए इस दिन का उपयोग कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ सद्भावना रखने और एक अधिक समावेशी तथा दयालु दुनिया बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए करें।
रघुपति राघव राजा राम वर्दित पावन सीता राम।
और कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले त्रिपुरा चलें।
Yes, absolutely. Well, we are heading to Tripura, a state in the northeast part of India, which possesses tremendous potential from the growth point of view. With the Union Budget 2025 to be presented on 1st of February, the state expects for a slew of measures to accelerate the growth engine of this diminutive state.
The central government has in recent years opened up many avenues for economic development of rural people and especially women and youth in the state of Tripura. The government has also been consistently providing financial support to the farmers through schemes like Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Yojana. In addition to this, the Lakhpati Didi and Drone Didi for easy feeding of fertilizers in the cropping fields gives dividends to the farmers. Also, PM Divine that has brought yields in internal road communication and infrastructures needs more focus and enhancement. In order to further boost the state's economy, economists and civil society feel that Tripura has a huge potential to explore tourism economy, which needs more focus to excel. Also, Tripura, along with the entire Northeast, can be an educational hub.
A budget is something that we all, particularly from the Northeast, we expect, because the government is expected to play a bigger role. Okay, the private sector is limited, so government initiatives are always a welcome thing for the people of the region. Something, a kind of special project, maybe something like the Statue of Unity, or maybe on the Manika Kings, a thing, something which can be a center of attraction, a declaration on that aspect, which can be an attraction for the tourists from the rest of India. And we can align the other tourist spots that we have. But we really need something which is big, which will draw the tourists in big number.
There are scopes to improve the infrastructure, modern some institutions, so that not only the employment issue, but the communication and other issues should be developed.
Tripura shares an 856-kilometer long border with Bangladesh. Instances of smuggling of narcotics, sugar and infiltration are reported on regular basis, even though the alert BSF jawans keeps a close vigil along the borders. Still, more intensive security cover along the borders is needed to make the state less dependable on the neighboring country. For decades, the state capital Agartala has been used as a transit point by the Bangladeshi people who visit India for medical tourism and for business purposes. Experts view that the very trade relation needs to be strengthened and expanded. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
और सारा कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित लोकोत्सव 2025 17 से 26 जनवरी 2025 तक दरिया संगम कला अकादमी गोवा में आयोजित किया गया था। इस वार्षिक लोकोत्सव में पूरे भारत के लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का मिश्रण दिखाई दिया। 600 से अधिक लोक कलाकारों ने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया, जबकि लगभग 1000 कारीगरों ने अपने शिल्प का प्रदर्शन किया। तो सुनते हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
The inaugural ceremony took place on January 17th at 6 p.m. with prominent guests including Chief Minister Dr. Pramod Sawant and other dignitaries. The festival, which celebrates its 24th year, hosted folk groups from across India presenting dances like Ganesh Vandana, Kunbi, Mando, Garba and more.
In addition to performances, the festival featured 550 stalls offering handicrafts such as Bandani, Khadi, wooden toys and Goan crafts. Traditional food from various states including Goa was available for tasting from 10 a.m. to 10 p.m. A special tribal craft mela was held in collaboration with the Directorate of Tribal Welfare, along with a painting and sculpture exhibition honoring Goan artist Manohar Rai Sardesai and Ravindra Kelekar. A workshop of Rajasthan's traditional Molela terracotta art was offered from January 20th to 24th, 2025.
The event is a platform to promote folk traditions, crafts and cuisine from different regions, making it a significant cultural gathering in Goa. For Parikrama, with inputs from Prashila, this is Mahesh Sopade for Akashwani Panji.
The New Delhi World Book Fair 2025 will commence from the 1st of February at Bharat Mandapam in New Delhi. This year, the fair's theme is We the People of India, commemorating 75 years of the Republic of India. The 9-day affair will be inaugurated by President Draupadi Murmu. Speaking to Akashvani News, Director of National Book Trust, Yuvraj Malik, highlighted that this year, Russia is the focus country of the fair, and over 50 countries will participate, including France, Argentina, Spain, Colombia, Abu Dhabi, and Qatar. He added that nearly 2,000 publishers and 1,000 speakers will attend the fair.
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 1 से लेकर 9 फरवरी भारत मंडप हॉल 2 से 6 में आयोजित किया जाएगा. इस वर्ष की थीम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, जो संविधान के 75 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई है. विशेष रूप से रशिया हमारे गेस्ट कंट्री है, जिनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इसमें हिस्सा ले रहा है. आने वाले 9 दिनों में लगभग 600 से ज्यादा साहित्यिक कार्यक्रम, 1,000 से ज्यादा लेखक आपको वहां रूबरू होने को मौका मिलेगा. और विशेष रूप से बच्चों के लिए हमने एक पेविलियन तैयार किया है, जहां अलग अलग चिल्ड्रन एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन को हमने आयोजित किया है, और हर शाम एक कल्चरल इवनिंग भी रखी गई है, जिसे एमपी थिएटर में आयोजित किया जाएगा. सो कुल मिलाकर आने वाले 9 दिन आपको लगभग 50 देशों के 600 से ज्यादा लेखकों, साहित्यिक कार्यक्रमों के बीच अलग अलग रूप से किताबों की इस दुनिया से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा. और ये पुस्तकों का महाकुंभ हर वर्ष पुस्तक प्रेमी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और संयोग है कि इस वर्ष महाकुंभ भी है, पुस्तकों का महाकुंभ भी अब तक का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, जो अभी तक नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रकाशन जगत के सहयोग से आयोजित किया गया. और काफी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, स्पेन भी है, इटली भी है, कोलंबिया भी है, तुर्की भी है, शारजाह बुक अथॉरिटी भी है. तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 50 से ज्यादा देशों का अलग अलग सहभागिता आपको इन 9 दिनों में देखने को मिलेगी. लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मुझे लगता है कि शायद आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचेगा. तो मुझे उम्मीद है कि सभी पुस्तक प्रेमी अपना समय निकालकर एक बार इस पुस्तक मेले में जरूर आएंगे. सुबह 11 से लेकर रात को 8 बजे तक मेले का समय रखा गया है, 1 से लेकर 9 फरवरी. उद्घाटन 1 फरवरी सुबह 11:30 बजे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाएगा, और आप टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, मेट्रो गेट से ले सकते हैं, और अगर नहीं ले पाए तो आप बुक फेयर आने के बाद गेट पर जो स्कैन कोड लगे उनको स्कैन कर अंदर एंट्री कर सकते हैं.
और सारा बताएं व्यापार जगत में क्या कुछ हो रहा है.
Well, benchmark domestic equity indices today continued their upward momentum for the third straight session. The 30 share index at Bombay Stock Exchange Sensex gained 227 points or 0.3% to close at 76,760. Similarly, the National Stock Exchange on Nifty 50 added 86 points to settle at 23,249. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.6%, down at $76.09 per barrel, and WTI crude also lost over 0.7% to trade at $72.09 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 81,270 rupees for 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 93,170 per kilo when reports last came in. Khel ki jagat ki khabre kuch aap bataiye Mukesh.
Ji bilkul, baat karte hain football ki. Indian Super League फुटबॉल टूर्नामेंट में कल शाम गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद फुटबॉल क्लब को 4-1 से हरा दिया. गुलेर्मो फर्नांडीज ने 17वें मिनट में नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब की ओर से गोल किया. बाद में अलाइदीन अजारिये ने हाफ टाइम से पहले एक गोल कर अपनी टीम को 2 गोल की बढ़त दिला दी. आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब से होगा. यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.
And in badminton, former world number one Kidambi Srikanth and Shankar Subramanian advanced to the men's singles quarterfinals of the Thailand Masters tournament in Bangkok today after winning their respective matches in contrasting fashion. Srikanth secured a commanding victory over Jason Gunawan of Hong Kong, defeating him 21-19, 21-15 in just 42 minutes in the pre-quarterfinals, while Subramanian defeated Indonesia's Chico Oradwi Wardoyo in the round of 16. In women's singles, Rakshita Ramraj overcame Tung Xiao Tong of Taiwan to enter the last eight, and in mixed doubles, India's Rohan Kapoor and Ritvika Garde went down against Thailand's Rachapol Makasithon and Nathamon Lai Swian in the pre-quarterfinals.
और अब सुनते हैं आजादी का सफर.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम.
Today we pay homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, who breathed his last on 30th of January 1948.
In September 1947, Gandhiji arrived in Delhi from Calcutta, where he had gone to appeal for peace following the partition riots. He stayed at Birla House in Delhi. Most of his time at Birla House was spent in writing letters, meeting visitors and attending prayers.
Hindu dharma, sacha Hindu dharma, aisi caste ko, chhua chhut ko, ek jangli aur ek bada hai, un sab cheezon ko sthan nahi de sakta hai. Usme sarva dharmon ka samuchay samavisht hona hi chahiye. Agar nahi hota hai, to meri nigah mein wo Hindu dharma nahi hai.
Gandhiji began his last fast to restore communal harmony on 13th of January 1948. After 7 days, on the 20th of January, there was an attempt to assassinate Gandhiji when a person threw a bomb at Birla House. But it didn't harm Gandhiji, and he said,
"If I am to die by bullet of a madman, I must do so smiling. There must be no anger within me. God must be in my heart and on my lips."
When Gandhiji was offered an enhanced security cover, he said,
"Those who preferred security to freedom had no right to live."
On the evening of 30th of January, when Gandhiji was being escorted to the prayer meetings by his two grandnieces, Nathuram Godse emerged from the crowd. He bowed to him and shot him 3 times at point-blank range. Gandhiji slumped to the ground, mortally wounded.
Speaking on the All India Radio, Prime Minister Jawaharlal Nehru informed the nation about the loss as,
"The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more."
The following day, an enormous crowd estimated at nearly 1 million people lined the 5-mile route of the funeral procession to the bank of the Yamuna River. The ashes were kept on the river bank for 3 days before they were taken away for immersion in Sangam in Prayagraj. His memorial Rajghat in New Delhi is a pilgrimage for millions of his followers.
We also remember Kudumala Rangarao, who ushered in an era of social reform and inspired even Mahatma Gandhi to follow in his footsteps.
Born into a poor family in Kasargod, Ranga Rao envisioned empowerment of the depressed classes through education and steered change in a society way back in the 1890s. Ranga Rao set up schools for the downtrodden. He called them Panchama schools.
To persuade the kids to attend schools, he arranged for midday meals and 2 paise per day to the parents to develop an interest and motivate the families to get their children to schools. By marrying off his own widowed daughter to the zamindar of Kumaramangalam, he set an example of inter-caste marriage and widow remarriage in India.
Following his inspiration, Gandhiji married one of his sons with the daughter of C. Rajagopalacharis. Mahatma Gandhi said,
"I discerned social loyalty from Mr. Ranga Rao. He's an inspiration and a guide for me. He's my teacher when it comes to the upliftment of the untouchables."
Kudumal Ranga Rao breathed his last in Mangalore on 30th of January 1928.
30th of January is also the death anniversary of Makhanlal Chaturvedi, born in Hoshangabad on the 4th of April 1889. He was inspired by Bal Gangadhar Tilak and Gandhiji. He was the illustrious editor of Prabha and later Karmaveer, the journals which enlightened the masses against British imperialism. He was imprisoned by the British government many times and his journal was forcibly closed down by the British. The British excesses could not bend the will of the valiant patriot poet. Once out of jail, Makhanlal restarted his journal.
After independence, Makhanlal refrained from seeking a share in power and continued to exhort the people through speech and writing. He continued to walk on the path shown by Mahatma Gandhi to build an equitable society. He was awarded the first Sahitya Academy Award in Hindi for his work Him Tarangini in 1955. The government of India awarded him the Padma Bhushan in 1963. Makhanlal Chaturvedi breathed his last on 30th of January 1968 in Bhopal. We salute the great nationalist.
और समय हो गया है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। भावना प्रधान कहानी लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद अनुपम थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामी, तितली और कंकाल।
Today we are also remembering a Marathi playwright, actor and theatre director, Satish Vasant Alekar. He was a founder member of the Theatre Academy of Pune and most known for his plays Mahanirvan, Mahapur, Atireki, Pidhijat, Mikiani Mem Sahib and Begum Barve, all of which he also directed for the Academy. And the recent plays were directed by Nipun Dharmadhikari and Anupam Barve, along with Mahesh Elkunjwar and Vijay Tendulkar. He is considered among the most influential and progressive playwrights in modern Marathi and Indian theatre. He also remained the head of the Centre for Performing Arts, University of Pune, which he founded after foregoing the directorship of NST, and previously remained an adjunct professor at various universities in the US. He was awarded the Sangeet Natak Academy Award in Playwriting Marathi in 1994 and India's National Academy of Music, Dance and Drama. He also received the Padma Shri in January 2012. And after his retirement, he was nominated by Savitribai Phule, Pune University, as Distinguished Professor on the campus from 2013 till 2022.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक चिदंबरम सुब्रमण्यम को। और भारत को जब आजादी प्राप्त हुई थी सारा, उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। कई स्थानों पर अकाल पड़े। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अनेक लोग भुखमरी के शिकार हुए और काल का ग्रास बन गए। जब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया तब उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की। उनकी बेहतर कृषि नीतियों के कारण ही 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। सी सुब्रमण्यम की नीतियों और कुशल प्रयासों से ही देश खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सका।
And probably those who were in their teens in the 90s would remember Mehnaz Hussain, a pop singer and songwriter from Mumbai, and she was popularly known for her hit song Banungi Main Miss India. So why not, let's listen to that song.
और अपने जमाने के मुख्य चरित्र रूप से चरित्र और खलनायक की भूमिका निभाने वाले हिंदी फिल्मों के अभिनेता रमेश देव को भी हम याद कर रहे हैं। वो मूल रूप से कोल्हापुर, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म आरती से हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की। अपने लंबे फिल्मी करियर में रमेश देव ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने अभिनय के दम पर मराठी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपना मुकाम बनाया। अभिनेता रमेश देव ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सोने पर सुहागा, आजाद देश के गुलाम, कुदरत का कानून, इल्जाम, पत्थर दिल कई फिल्में की हैं। ये एक उनकी फिल्म का हम डायलॉग सुन लेते हैं। फिल्म का नाम है आनंद।
इस प्रोफेशन में कम से कम पेट दांत का दर्द तो कम कर सकता हूँ।
तू समझता जो कर रहा है अच्छा कर रहा है?
कोई ऐसा बुरा भी नहीं बास का। तूने सुबह एक लड़के को भेजा था ना मेरे पास एक्सरे के लिए?
हाँ, क्या मिला?
उसके बाएं फेफड़े पर टीबी का पैच मिला। मैंने उसे कहा और वो जाकर इंजेक्शन ले जाए। तू क्या समझता है वो उसके पैसे दे सकता है? ऐसे इलाज के लिए मुझे मिसेस सन्याल से पैसे लेने पड़ते हैं और वो भी कोई मुफ्त में नहीं देती। हाँ ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का शक है और मैं उस शक का इलाज करता हूँ। क्या बुरा?
Today we are also remembering Priya Darshan on his birthday. We all know that he is a very renowned film director and screenwriter, and in a career of nearly 3 decades he has directed over 90 films. Aur bahut hi you keh sakte hain itni achhi films hoti hain Priya Darshan ki ki aap bejhijhak apni family sath baith ke you can have a good time. And unki ek film aayi thi Hangama, aur badi hi mazedar picture thi, uska ek gana sunte hain.
आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल।
और हम याद कर रहे हैं खूबसूरत चित्रकारी करने वाले चित्रकारों में से एक रही अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने कैनवास पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी। अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था कि मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीकी भी है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर। नमस्कार।
नमस्कार।